मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो सिख हैं, दे आर पैट्रियाटिक, वेरी वेरी लॉयल एंड पैट्रियाटिक। अच्छा, शाजिया ने ना बड़े हैप्पीली वो इंटरव्यू, आप यकीन कीजिएगा, इतने खूबसूरत अंदाज में, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने उस इंटरव्यू को 3-4 बार सुना, आप भी ज़रूर सुनिएगा। अब शाजिया ये इंप्रेशन ले रही थी कि वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, आई वॉज लिसनिंग, और मैंने उसके बाद 2 बार बाद में फिर सुना उस इंटरव्यू को। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हमने बात की थी बलूचिस्तान के अवाम से, हमने, भाई तुम सोए हुए थे बलूचिस्तान के अवाम से बात करने के लिए, तो गवर्नमेंट से बात करते। इन्होंने क्रिकेट की कोई बात की, उन्होंने कहा जी हमने अवाम से बात की थी, फलां औरत रो रही थी मैंने उसका दे। उनका हर बंदा अपने मुल्क के एजेंडे के लिए काम करता है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी पार्टीज हैं, हमारी पार्टी है पीपल्स पार्टी, हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग, हमारी पार्टी है पीटीआई, हमारी पार्टी है जेयूआई, हमारी पार्टी पाकिस्तान नहीं है।
मैं तो ये कहता हूँ आरिफा,
ये मुझे, और मैं इंडिया के एक्स जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, आर्मी ऑफिसर्स, मेरी अभी रिसेंटली इंडिया के कर्नल आए हुए थे, मेरे नेबर ही हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, आप यकीन कीजिएगा वो इतने कमाल से आपको अपनी बात सुनाते हैं कि आपको लगता है पता नहीं मेरी बात ही कर रहा है, हालांकि वो अपनी तारीफ कर रहे होते हैं।
उन्हें
हम बिक जाते हैं।
हमारी मुश्किल तो यह है भाई, भाई देखो,
इट्स अ वेरी बैड क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो।
मैं तो कहता हूँ, मैं तो बिल्कुल 100% तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको तारीख के आईने में देखो, ये लोग जो लियाकत अली खां को रास्ते से हटाने के बाद से पाकिस्तान की सियाहो सफेद के मालिक रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनका माजी क्या है, ये तो फरंगी दौर की पैदावार है, ये तमाम अशराफिया जो अपने आप को पाकिस्तान की कहती है, इसको बनाने वाला कौन था, ये तो फरंगी राज की पैदावार है। मैं बार बार
ये मुखबर से मुसलमानों के
हवाला बार बार हवाला देता हूँ 1857 का, कि वो हमारे ही जंग आजादी का सिर आगाज है। 1857 में जब मेरठ से बगावत शुरू हुई और दिल्ली जब पहुंचे और उन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया, तो फिर अंग्रेज ने पनाह कहाँ पे ली थी, अंग्रेज ने पनाह ली थी पंजाब में, वहां पे उसने सिपाही भर्ती करने शुरू किए थे, और सिपाही भर्ती करने वाले कौन थे, वो यही ये आज की अशराफिया
बदतरीन जगह निकली पंजाब,
अजदाद थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े जागीरदार कौन है, टिवाना, इनका जद फरंगी के लिए 2 आने कमीशन लेके सिपाही भर्ती किया करता था माजे साहब, फरंगी इसको कहते थे टू आना कहते थे,
दो आने से
वो बिगड़ के टिवाना हो गए। दूसरी एक बड़ी फैमिली जो है जागीरदारों की, वो है हयात फैमिली, तो मालूम है कि वो खिजर हयात टिवाना 1946 तक पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर थे और पंजाब के वजीर आला थे पाकिस्तान बनने से पहले। इनका जत कौन था, इनका जत सक्का था, जिसने जनरल निकलसन को दरिया पार करवाया था। अगर आज भी तुम इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ चलना शुरू करो तो वो तो जिसको हम जीटी रोड कहते हैं उस पर हसन अब्दाल से कुछ पहले बाई हाथ पर तुम्हें एक पहाड़ी पर एक बड़ी लाठ नजर आएगी, वो लाठ ही लाठ कहलाती ही निकलसन की लाठ है। जनरल निकलसन को उस सक्के ने दरिया पार करवाया। जनरल निकलसन ने मरने से पहले, वो मर गया वहां, मरने से पहले उस वक्त के पंजाब के गवर्नर हेनरी लॉरेंस को, हेनरी लॉरेंस की याद में लाहौर के में आज भी जिमखाने में वो इमारत है हेनरी लॉरेंस की, लॉरेंस गार्डन नाम था उसका, हेनरी लॉरेंस के नाम उसने एक रुका लिखा और कहा कि इस सक्के ने मेरी जान बचाने की बहुत कोशिश की है, इसने बहुत हमारी खिदमत की है, इसको इसकी खिदमत के बदले में कुछ इनाम दे दिया जाए। इनाम के तौर पे हेनरी लॉरेंस ने उस सक्के को जागीर अता कर दी, वहां से वो जागीरदार हो गए। तो ये माजी है, ये मैं वो
और यही बैकग्राउंड शाह महमूद कुरैशी की
उस खत का हवाला देता हूँ जो 1919 के जलियांवाला बाग के सानहे के बाद पंजाब के जागीरदारों और सज्जादा नशीनों ने माजे साहब उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर को लिखा था। वो खत आज भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उस खत में ये लिखा था कि सरकार, आपने इन बागियों के सर कुचलने के लिए जो कुछ भी कार्रवाई की वो दुरुस्त की, इसलिए कि हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि उलिल अमर की इताअत लाजमी है, और हम आपको ये बताते चलें कि हमने सरकार इंग्लिशिया के दौर में जो अमन और चैन और सुकून देखा है वो इससे पहले कभी नहीं देखा था। दस्तखत करने वालों में शाह महमूद कुरैशी के दादा भी थे, दस्तखत करने वालों में यूसुफ रजा गीलानी के दादा भी थे, और बड़े बड़े बहुत से नाम हैं। वो जो असेंबली के स्पीकर हमारे एक अरसे तक रहे थे, क्या नाम है उनके, उनके दादा भी उसमें शामिल थे। ये तो सब, ये तो सब
वो
ये
थी तो, एक आपदा
वो
आपदा हुसैन मुल्तान से, मुल्तान के इलाके से, जंग की थी।
उनके उनके जद भी थे। तो जितने भी नाम तुम पाकिस्तान की अशराफिया के मारूफ नाम ले लो, उन सब के अजदाद उस मुश्तरका खत पर दस्तखत करने वालों में थे। तो ये तो तारीख है, ये इनकी असलियत है जो आज पाकिस्तान के मालिक व मुख्तार बने बैठे हैं। ये तो फौज पंजाब में, फौज में कमीशन लेना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जन्नत का परवाना आपको मिल जाए।
जारी कीजिएगा, मैं एक चीज मंगवा रही थी, मुझे दो सवाल आपसे पूछने हैं। हाँ। मेरा ख्याल है आज के क्विकली दो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन तो ये करना चाहती हूँ कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है पंजाब की, या जो भी बात करें, वो अपनी मन मर्जी से बहुत से फैसले कर रहे हैं, वेयर एज जनाब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी मियाद जब पूरी होगी तो वो कहते हैं जी वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। क्या वजह है कि वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते?
तो पूरी हो चुकी है उनकी 9 सितंबर को,
मगर वो क्यों इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते?
वो दे सकते हैं, उनका आईनी इस्तेहकाक है कि वो इलेक्शन की डेट देंगे। ये जो बेहुदा बातें हो रही हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हासिल है, ये गलत है। आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से ये गलत है। तारीख देने का हक सिर्फ और सिर्फ मुल्क के सदर को हासिल है।
ठीक सर, बड़े प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और आज जनाब सिराजुल हक साहब का भी इंटरव्यू है, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की है। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा कि अगर इमाम एक जगह पे मस्जिद का है और वो छुट्टी पे चला जाए तो उसकी जगह दूसरा इमाम आता है, तो ये तो नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो मुल्क को रन करने के लिए सदर इज देयर, तो उनका इख्तियार
तो है और उनको कोई हटा नहीं सकता।
सर बंदियाल साहब जो हमारे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब है, उनका भी ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, और
15 तारीख को उनकी मुद्दत
73 मुकदमात का फैसला, उन्होंने आखिर में जाते हुए बहुत सारी सरप्राइजेस छोड़नी है। तो अगर नवाज शरीफ साहब की करप्शन की पिटीशन खत्म होती है तो इमरान खान का भी, अगर वो नहीं खत्म होती तो फिर इमरान खान के लिए भी आसानी है। कुछ फरमाएंगे कि वो जो आखिर में उन्होंने सरप्राइज
मुझे उमर अता बंदियाल से कोई भलाई की उम्मीद नहीं है।
अच्छा,
इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ जो भी साजिश हुई थी उस पर मोहर लगाने वाले यही उमर अता बंदियाल हैं, यही थे जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को 12 बजे शब में अदालत लगा ली थी
और इमरान खान
और वहां पे इमरान के खिलाफ फैसला दिया था। तो उमर अता बंदियाल से मुझे तो किसी खैर की उम्मीद नहीं है, मुझे कोई तवक्को नहीं है। उनके पास, हाँ उनके पास चॉइस थी कि वो या तो जस्टिस कॉर्नीलियस बन जाए या वो जस्टिस मुनीर का किरदार अदा करें। तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो जस्टिस मुनीर की रिवायत को फिर से जिंदा करके जाएंगे। वो उनकी अपनी मसलहतें हैं, मैं उनके दिमाग में तो घुस कर नहीं बैठ सकता, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बिना पर ये कहा जा सके कि उनको पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी से कोई दिलचस्पी है। वो तो अपना ये फैसला भी नहीं मनवा सके कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। उन्होंने फैसला दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के बारे में कि वो तहलील हो चुकी हैं, लिहाजा 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन वो उस फैसले को मनवा नहीं सके। और उनको कोई मैं तो नहीं देखता कि उनको कोई परेशानी है या कोई तशवीश है कि अदालत के अहकाम की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत के मुतालिक नवाज लीग ने क्या क्या नहीं कहा, नवाज की बेटी ने क्या क्या नहीं कहा
अभी रिसेंटली, बल्कि उन्होंने अदालत ने जितने फैसले किए, तो जो भी वो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आखिर में कहा था हम इस अदालत के फैसलों को मानते ही नहीं।
अदालत क्या, चीफ जस्टिस ने किसी एक को भी तौहीन अदालत के अदालत में पेश होने का हुक्म दिया? ये अदालत तो वो है जो अपनी इज्जत नहीं करवा सकती। तो इससे ये तवक्को रखना, उमर अता बंदियाल से ये तवक्को रखना कि वो कोई ऐसा तारीख साज फैसला करेंगे जो उनको पाकिस्तान के अदलिया की तारीख में वो मकाम अता कर जाए जो इससे पहले किसी और को अता नहीं हुआ था, तो ये खाम ख्याली है। मुझे उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है।
वकील को अपने शोबे के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है। जनाब तारड़ साहब वकील भी हैं, मगर बहुत से लोग उनके वालिद साहब का रेफरेंस देते हैं जो सदर रहे थे पाकिस्तान के, और उस लिहाज से तारड़ साहब की सुना बड़ी इज्जत है। उनके वालिद का क्या करियर था, क्या पास था?
तो ये था कि वो बलूचिस्तान क्वेटा जाके वो अपने साथ पैसों से भरे हुए बैग ले गए थे, और वहाँ पर उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ अदालत आलिया के दूसरे जस्टिसेस को इस बात पे आमादा किया था कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ, उस चीफ जस्टिस वो सज्जाद थे ना, जिनके खिलाफ नवाज लीग के जियानों ने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हल्ला बोला था, बाकायदा हमला किया था, तो वो उनको हटाना था। लिहाजा रफीक तारड़ ने वो फरीदा अदा किया कि उन्होंने अदालत आलिया के जजों को इस बात पर कायल किया कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दें, और इस तरह से वजीर आजम का जो हुक्म था वो सादिक हुआ, और इसके सिले में रफीक तारड़ साहब को इनाम के तौर पर पाकिस्तान का सदर बना दिया।
ये कौम बड़ी इंतहा पसंद है कि अगर किसी को सर पे चढ़ाना है तो चढ़ा लेना है, और अगर कुछ सुनी सुनाई बात पे आना है तो दो भाइयों को पत्थर मार मार के मजमे ने शहीद कर देना। आपकी नजर से गुजरे, आपकी नजर
कल्चर की लानत है।
अभी अता तारड़ साहब ने जो ये कहा है, एंड मैं रात सुन रही थी खोसा साहब को भी और दो तीन लॉयर्स को, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने तो कोई वकील और हायर किया ही नहीं बाहर से, मगर उन्होंने अब वो इंतहा पसंदी का रवैया, जैसे आपको याद होगा सलमान तासीर को एक आदमी ने, वो कादिर ने मार दिया था कि जी, हालांकि उसने कोई गलत बात तो नहीं की थी ना, ठीक है, उसने यही कहा था कि ये ब्लास्मे फहमी का जो केस है इसकी कोई वजाहत बेहतर तौर पे होनी चाहिए, दुश्मनी की बिना पे कोई भी कुछ कह सकता है किसी को मरवाने के लिए या गुजान पहुंचाने के लिए।
लेकिन तो, अब सलमान तासीर के कातिल की कब्र तो बाकायदा वो
मकबरा बन गया, तभी मकबरा बन गया,
वहां तो जाके लोग,
तो ये मैं इसी पे लेके आ रही हूँ कि तारड़ साहब ने अब जो किया कि जी सलमान रुश्दी के वकील को उनका वकील है, और कहते हैं इसमें 1% भी सदाकत नहीं, इमरान खान ने हायर कर लिया, विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। तो क्या ये झूठ बोलना और इस पे कुछ,
ये तो झूठ बोलना तो हमारी सियासत का खासा रहा है। ये तो कोई बद तहजीबी की बात नहीं समझी जाती, हमारे सियासी रहनुमा तो खुले बंदों झूठ बोलते रहे।
नवाज शरीफ साहब लगता है आपको पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे?
अब वो आ जाएंगे, इसलिए कि 15 सितंबर को उनकी पसंद का चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाएगा।
आई डाउट इट वेरी मच। मैं आपको तो बताऊँ, फैजी साहब देखिएगा जब आना है, क्योंकि इमरान खान से झगड़ा हो गया था, इमरान खान ने बाद में केस वापस ले लिया था, वो भी इमरान खान लोगों की बातों में आए थे तो उन्होंने फैजी साहब के साथ जंग मोल ले ली थी, आपको पता ही है ना।
वो इमरान का फैसला गलत था।
मगर फैज ईसा की अगर मैं हिस्ट्री को देखती हूँ ना, जैसे भी आपने मेरी करेक्शन की और मैं तो माय ब्रदर में से आर्टिकल वो पैराग्राफ्स शेयर कर रही थी, मगर फैज ईसा साहब की भी अगर पास देखा जाए तो मतलब मुझे
उनके वालिद का के जो किरदार रहा है पाकिस्तान बनते वक्त, वो तो तुम्हें मालूम है ना तारीख
जी,
कि बलूचिस्तान
पैसे में तोला गया था उनको,
क्योंकि बलूचिस्तान और दूसरे सूबों की तरह से सूबा नहीं था। बलूचिस्तान पर दिल्ली से बराह रास्त हुकूमत होती थी
जी,
और वायसराय की तरफ से एक रेजिडेंट रहा करता था। तो तकसीम के माहदे के तहत बलूच रियासतें आजाद थी कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ चली जाए,
इंतखाब करें।
उस वक्त बटे हुए थे सरदार, कुछ हिंदुस्तान के हक में थे और कुछ पाकिस्तान के हक में थे, और हिंदुस्तान के हक में कायल करने का जो ठेका था वो काजी ईसा ने अपने जिम्मे लिया हुआ था।
अच्छा,
वो बलोच सरदारों से ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुझसे ये वादा किया है कि इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे बलोच तुम्हें अगर तुम हिंदुस्तान के साथ इलाक कर लोगे। वो तो नवाब मोहम्मद खान जोगे जई और कुछ और सरदार थे जिनके कानों में इस साजिश की भिनक पड़ गई थी, और उन्होंने जिरगा करके फिर पाकिस्तान के हक में वोट दिया। इस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, वरना काजी फैज ईसा के वालिद बुजुर्गवार अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते तो बलूचिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
बहुत शुक्रिया, आपके कितने की तरफ चलेंगे और बहुत खूबसूरत पोइट्री करते हैं। शुक्रिया। ओंटेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे जिसमें पार्टी रूम्स हैं, डेली डिनर्स हैं, वी प्राउडली अनाउंस के बिल स्टेस ने अब सेकेंड ब्रांच जो है वो ओकविल में शुरू की है। दैट इज 2294 लेक शोर के ऊपर आपको मिलेगा ब्यूटिफुल एम्बियंस, ब्यूटिफुल। इसके अलावा फूड बहुत मजे की है विलेज टेस्ट।
आज तो
आप मंथली डील भी उनसे ले सकते हैं, 9052323633663 उनका नंबर है। ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय रियालिटर, ये साहब बायर्स एंड सेलर की लीड है, फुली फंक्शनल CRM। ये है एग्जेक्टिव होम रियलिटी। अगर आप रियल स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कर लीजिएगा। इवन अगर आप किसी और ब्रोकरेज से हैं और आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज इन इट, आपको टीच एंड ट्रेन कैसे कर सकते हैं, आप डायल कीजिए 9058901300 या एग्जैक्टिव होम रियलिटी पर रब्ता कर लीजिएगा। हमारे आज के प्रोग्राम को तावन दिया है ये हैमलेट स्टेज प्ले है जिसको करने के लिए आहद रजा मीर खुद तशरीफ ला रहे हैं, एंड दिस स्टेज प्ले रोज थिएटर में 12, 13, 14, 18 शाम 8 बजे ये होगा, आप बुक कर लीजिएगा। जबकि 14 तारीख को दोपहर को 2 बजे का और अहद रजा मीर विल बी इन टाउन, ठीक है, तो आप जरूर तशरीफ लेके जाएं। एक और पैगाम देना चाहती हूँ, ये सब नेक्स्ट टू वायरलेस की जानिब से है। अगर आप सैमसंग ड्यूअल सिम के लिए फोन, आपको दो फोन कैरी नहीं करने पड़ेंगे, एक टेलीफोन डबल सिम, तो आप $120 जस्ट $120 ब्रांडेड टेबलेट्स लेना चाहते हैं आप, आईपैड लेना चाहते हैं कॉलिंग फीचर्स के साथ, $120। अर्जेंट फ़ोन की रिपेयर, आप अपने फ़ोन की रिपेयर करना चाहते हैं या लैपटॉप की रिपेयर करना चाहते हैं या आप अपने जीपीएस को अपग्रेड करना चाहते हैं, डैश कैम लगवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में और आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर, अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर लगवाना चाहते हैं तो अभी आप कॉल कीजिए 6472720020, 272-00-20, 272-00-20, टेलीफोन की रिपेयर है, सेल फोन की कोई डील लेना चाहते हैं आप, कवर्स लेना चाहते हैं, वायर्स लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए नेक्स्ट टू वायरलेस माल्टन में 7171 गोरवे ड्राइव, नेक्स्ट टू वायरलेस सईद मियो को कॉल कीजिए 6472720020, 272-00-20। मेरे साथ हैं जनाब करामत क़ारी साहब और आज के हालात के ऊपर आप हमेशा दरिया को कूजे में बंद करते होते हैं। जी क़ारी साहब, आज के हालात को कैसे कवर करें? बाबा
कौम की बरसी है
जी सर,
तो एक तो हमारी क्रिकेट टीम ने
गुल खिला दिया,
इबरतनाक शिकस्त खा के
वेदर खराब हो गया,
बाबा को जो नियाज दी, मौसम खराब हो गया था, वो हिंदुस्तान की टीम के लिए तो क्यों अच्छा था। तो खैर बाबा कौम के लिए आज मैंने ये
कहते हैं दिल को बहल, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
यही तो इस कौम का मसला है कि हम अपनी कमजोरियों के लिए जवाब पैदा कर देते हैं।
एग्जैक्ट, बड़ी सही बात कही।
तो सुनो, ख्वाब क्या देखा था बाबा ने, मिली क्या ताबीर?
ख्वाब क्या देखा था बाबा ने, मिली क्या ताबीर?
पंजे गाड़े हुए इस कौम पे बैठे हैं अमीर।
क्या बात है साहब,
पंजे गाड़े हुए इस कौम पे बैठे हैं अमीर, मुल्क को तोड़ने वाले हैं महाफिज इसके,
मुल्क को तोड़ने वाले हैं महाफिज
इसके, अस्करी जबर की मुद्दत से है ये कौम असीर।
क्या बात है,
अस्करी जबर की मुद्दत से है ये कौम असीर। और आज जो हमारी टीम ने कारनामा किया है उस पर भी चार मिसरे हो गए हैं। हर तरह से जिल्लत है, हर तरह से रुसवाई,
हर तरह से जिल्लत है,
हर तरह से रुसवाई, खुश नसीबी मिल्लत से हो गई है हर जाई, खुश नसीबी मिल्लत से हो गई है हर जाई, वो सियासी दंगल हो या हो खेल का मैदान, वो सियासी दंगल हो या हो खेल का मैदान, हर कदम पे ठोकर है, खो गई है बीनाई,
हर कदम पे ठोकर है, खो गई है बीनाई। बाज़ औक़ात बहुत तंगी के दिन आते हैं तो फिर शायद इंसान झंझोड़ा जरूर जाता है।
इन्नमा अल उसरे युसरन।
बिल्कुल, अल्लाह ने जहाँ पे मुश्किल बनाई है तो उसकी आसानी,
उसकी रहमत से ही इंशाअल्लाह।
जनाब करामतुल्लाह क़ारी साहब एवरी मंडे को हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे चैनल एक स्पॉन्सर्स का पैगाम वेलकम बैक। सर आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से ममनून और मशकूर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर आप ये मत समझिए कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना, बहुत से शागिर्द ऐसे होते हैं जो सवाल भी पूछा करते होते हैं। मेरे और आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरा अपना वतन, आप तो सिर्फ प्रोग्राम सुन के बात ही कर देते हैं ना, आफरीन है उस इंसान के जो एवरी मंडे को टाइम निकालते हैं, आप तशरीफ लाते हैं, और देर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन, देर कम्युनिकेशन का गैप ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जिम्मेदार ठहराती हूँ वोटर्स को, क्यों आप वोट डालते हैं उन लोगों को? अगर आज पाकिस्तान में महंगाई है तो उठिए ना, निकलिए जरा, करिए ना बात।
बरादरी निजाम की लानत है,
बरादरी निजाम चाचे को जानता, और यही सिस्टम आप और मैं कनाडा में ले आए,
साडा बंदा
वोट पाना जी, अपना ही बंदा वोट पा दियो जी, अपनी कुड़ी है ते अपना मुंडा है, वोट पाओ जी।
जहाँ इस बुनियाद पर वोट डाले जाएंगे वहाँ हमेशा अबतरी रहेगी।
चंद एक स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
रियल एस्टेट दी दुनिया विच थोड़ी कामयाबी एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी जिथे तुसी 1.5 लाख तो 2 लाख साल दा कमा सकदे हो। इस तो अलावा फ्री बायर एंड सेलर लीड्स, वीआईपी एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वन ऑन वन सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप, टीच एंड ट्रेन प्रोग्राम, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न ऑफिस विद प्राइवेट रूम, इन हाउस मॉर्गेज एंड लॉयर्स टीम, इन हाउस प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर देर का दी आओ ते ज्वाइन करो एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी या कॉल करो 905-890-1300 या विजिट करो ehrb.ca।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਨ ਸਟੇਜ 12 ਸੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰ ਅਹਦ ਰਜ਼ਾਨੀਦ ਕੋ ਹੈਮਲਟ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇ ਦੇਖ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹੈਮਲਟ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਦੌਰ ਕੇ ਲਈ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਤਕਾਮ ਔਰ ਦਾਗਦਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਗਲਪਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਈਨ ਪਰ ਚਲਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਯੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾ ਸਾਨਿਆ ਹੀ ਲਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਮਤ ਭੁਲੀਏਗਾ ਹੈਮਲਟ 12 ਸੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇ। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें BramptonOnStage.ca।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी। तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
Pizzas Pros and Wings, 6 location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh aur mazedar pizzas ki variety. Ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out call 905-789-8838, 905-789-8838, www.pizzapros.ca।
Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia।
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding,
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge। 905-454-2112
Akal Truck and Loom,
Tade Truck Badshah di quality service, repair, oil change, wash te maintenance।
Ek hor khush khabri,
North American, Chinese te Korean nave te istemal shuda tires with full warranty।
Akal Truck and Loom, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100, 905-565-1100।
Save big bucks. Postream Auto Glass, windshield repair and replacement. Small chip ho ya scratch, professional staff karenge aapki windshield repair minton mein. Wo bhi insurance claim ke saath. Special chip repair promotion of $60 only. Serving in Mississauga, Milton, Oakville, Burlington or Hamilton mein. For service call today 905-818-8472. 905-818-8472.
ये नंबर नोट कीजिए जरा 6475109494 पूछिए क्यों क्योंकि ये नंबर है अली यासदानी का और वो है मॉर्गेज एजेंट और उनकी बात कुछ अलग है पूछिए क्यों क्योंकि अली यासदानी आपको लेके देते हैं सही रेट सही टर्म्स के साथ सही मॉर्गेज पूछिए क्यों क्योंकि वो है अकाल मॉर्गेजेस के साथ
अकाल 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 मॉर्गेजेस
लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड अब हम पूछे कुछ नंबर याद है ना आपको 6475109494 अली यासदानी
चांदनी विक्टोरिया हॉल
शादी मंगनी कॉर्पोरेट इवेंट इज्तिमा न्यू ईयर फेस्टिवल ईद बाजार शॉपिंग मेला या फिर कॉन्सर्ट
फॉर ऑल एंड एनी इवेंट्स अल्टीमेट वेन्यू
मॉडर्न डेकोर 1200 अफराद के बैठने की गुंजाइश
नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड एंड सर्विस
25 साल हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस
32 rooms hotel to accommodate your guests.
Pakistani, Indian, West Indian cuisine, Chandni Victoria Hall. Call kijiye 647-965-3823.
647-965-3823. 2935 Drew Road, Mrs. Saga, chandnivictoria.ca.
جیسا پروگرام ایک فپر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں ایک قومی نغمے کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 11 سپتمبر ہے اور بیماری کے دن انہوں نے کیے تھے کہتے ہیں 30 جولائی کے بعد نہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دوائی لینے سے انکار کر دیا تھا اگین اب جناب کرامۃ اللہ غوری صاحب نے جو تاریخ بتائی ہے ظاہر ہے اس کے لحاظ سے میں کیا کہوں اور میں کیا نہ کہوں کہ ہم کس کو کہیں صحیح 31 جولائی سے 12 اگست تک جناح کے جو کہتے ہیں دو تین میں جناح کی حالت بہتر ہوئی تو 3 اگست کو ڈاکٹر کرنیل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کے لیے رخصت بھی حاصل کر لی چند دن بعد عید آنے والی تھی ڈاکٹر الہی یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کہتے ہیں ابھی لاہور پہنچے ان کو ایک ہی دن ہوا تھا کہ ڈاکٹر عالم کے ساتھ علاج کرنے کا آلہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن اپریٹس تھا نا وہ زیارت لینے کی لوٹنے کے لیے تاکید کی گئی 6 اگست کو یہ آلہ لے کر زیارت پہنچے ڈاکٹر ریاض نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں محمد جناح بہت کمزور ہو گئے تھے ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی اسی شام بھر کی شعاؤں سے جناح کے قائد اعظم محمد علی جناح کے علاج کا آغاز ہوا مگر انہیں موافق نہیں آیا 9 اگست کو ڈاکٹر نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کیا جانا چاہیے پہلے 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے کیونکہ اس سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کی بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر 13 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے تھے قائد اعظم محمد علی جناح زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنیل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے کا آمادہ کیا جائے ان کی خاص پسند کا کھانا بتائیے گا فاطمہ جناح نے بتایا کہ بامبے میں ان کے یہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ پتہ مل سکے یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کیا جائے اور زیارت بھیجوایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے وہ باورچی مل گیا اور اسے زیارت بھیجوا دیا گیا تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھے تو تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر کافی سارا کھانا کھا لیا جناح نے پوچھا کہ یہ آج کھانے کس نے بنائے ہیں تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھیجوایا اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا تیار کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھیجنے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے کسی غیر نے تو نہیں خرچ کیا پھر قائد اعظم نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی, لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے. جب پھر انہوں نے فائل منگوائی نا تو اس فائل کے بیچ میں انہوں نے یہ ریمارکس دے دیے کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا پاکستان کی حکومت کے کسی ادارے کی بھی ذمہ داری نہیں. خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اپنی جیب سے یہ خرچ ادا کر سکوں. اور پھر ایسا ہی ہوا. 13 اگست سے 28 اگست تک ان کی طبیعت کا سنبھلنا, اور کراچی آپ پھر کوئٹہ سے کراچی واپسی پر بھی آمادہ ہو گئے. بار بار درخواست کی گئی تو شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہوئے کہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاول پور کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے. قائد اعظم سے کہا گیا کہ ان کے قیام گاہ کی رہائش کے لیے ان کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا, تو ان کی اصول پسندی نے خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مملکت کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ایک ریاست کے نواب سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں. 29 اگست قائد اعظم نے کہا کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں. الہی بخش نے جناح کا ایک مرتبہ پھر معائنہ کیا. لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کو معائنہ کرنے کے بعد میں نے امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں آپ پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے زیادہ دیر زندہ رہیں. میرے وہم و گمان میں بھی نہ آیا کہ میرے جذبات سے وہ غمگین ہو جائیں گے. ان کے یہ الفاظ, ان کا افسردہ اور یاس انگیز لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا, لیکن اب میرا مرنا اور جینا برابر ہے. ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک ایسے شخص کو آپ دیدہ دیکھ کر جسے جذبات سے یکسر آری اور فولاد کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا. ڈاکٹر الہی بخش کہتے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا. ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ اس جواب میں میری الجھن اور بڑھ گئی اور خیال ہوا کہ وہ اصل بات پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں, اور جو وجہ انہوں نے بتائی وہ یوں ہی ٹالنے کے لیے. میں رہ رہ کر سوچتا تھا کہ کیا آج سے 5 ہفتے پہلے ان کا کام نامکمل تھا, اب ان کے کام یک یک پایا تکمیل کو کیسے پہنچ گئے. بہرحال یہاں پہ کہتے ہیں کہ قدر مختلف الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ اگست کے آخری دنوں میں جناح پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا. ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا, فاتی اب مجھے زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں, میں جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے. یہ بدشگونی کے الفاظ تھے. میں لرز اٹھی, میں نے بجلی کے ننگے تار کو جیسے چھو لیا ہو. پھر بھی میں صبر و ضبط سے کام لیا اور کہا, آپ فکر نہیں کریں, آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. میری بات سن کر وہ مسکرائے اور مسکراہٹ میں یاس چھپی ہوئی تھی. انہوں نے کہا, نہیں اب میں صرف زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا. اب 1 ستمبر سے 10 ستمبر کو ہیمبرج اور کراچی واپسی کی تیاری. جنرل ڈگلس گریسی کے نام ایک خط تحریر کیا جو بدقسمتی سے ان کی آخری تحریر ثابت ہوئی. اس خط میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا کہ میں نے آپ کے خط کی ایک نقل قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نائب صدر کو بھی بھیج دی ہے, اور میں نے اس فنڈ میں 3 لاکھ روپے کی ایک امداد کی منظوری بھی دی ہے جو تھل پروجیکٹ مہاجر فوجیوں کی بہبود کے لیے مخصوص ہے. اس روز ڈاکٹر الہی بخش نے مایوسانہ لہجے میں محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ ان کے بھائی کو ہیمریج ہو گیا ہے, انہیں فوراً کراچی لے جانا چاہیے کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے موضوع نہیں. اگلے آنے والے دنوں میں جناح کی طبیعت مزید بگڑتی گئی. 5 ستمبر کو ڈاکٹرز نے تشخیص کیا کہ ان پر نمونیا کا بھی حملہ ہو گیا. ڈاکٹر الہی بخش نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مرزا ابو الحسن اصفہانی کو لکھا کہ وہ جناح کے لیے چند ڈاکٹرز کو بھجوا دیں. ان ڈاکٹرز کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے تجویز کیے تھے. اسی دوران ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی سے ڈاکٹر مستری کو بھی کوئٹہ بلوا لیا, مگر اس کے باوجود جناح کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہ ہوا 5 ستمبر تک. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب جناح کی سیکرٹری فاروق امین نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کروانا چاہی تو ڈاکٹر الہی بخش ان کے کئی بار اصرار کرنے کے باوجود اجازت دینے سے انکار کر دیا. لکھتے ہیں کہ انہیں اس ملاقاتی کا نام نہیں بتایا گیا, تاہم اس وقت کے حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم میر لائق علی نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد کے ایک باب میں جس کا عنوان جی نہ جیم نہ آن ڈیتھ بیڈ میں لکھا ہے کہ یہ ملاقاتی وہ خود تھے، تام اسرار کے باوجود قائد اعظم سے ملاقات میں کامیاب نہ ہو پائے۔ 10 ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو اطلاع دی کہ اب جناح کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں، پیچھے ترانہ لگا دیں۔ غالباً اسی دن جناح پر بے ہوشی کا غلبہ ہوا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے بے ربط الفاظ ادا ہو رہے تھے، وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین میں اسے مکمل کروں گا، بہت جلد مہاجرین انہیں ہر ممکن مدد دو، پاکستان۔ اب آ جاتے ہیں 11 ستمبر، یہ وہ دن تھا جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی روح نے پرواز کی تھی۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائکنگ طیارے تک پہنچایا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا گیا تو عملے نے انہیں سلامی دی اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناح نے انتہائی نقاہت کے باوجود فوراً ان کی سلامی کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس ہے۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح بہت بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی اور یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ ڈاکٹر مستری نرس دنہم، نیول اے جو نیول اے ڈی سی لیفٹیننٹ مظہر احمد اور جناح کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری فروخ امین بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ طیارہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کو لے کر سہ پہر 4:15 ماری پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ جناح کی ہدایت پر انہیں لینے کے آنے والوں میں نہ حکومت کا کوئی عام رکن موجود تھا، نہ ہی ضلعی انتظامیہ ان کی آمد سے باخبر تھی۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفری نولز کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولنس میں منتقل کیا۔ فاطمہ جناح اور فلس ٹینم ان کے ساتھ بیٹھ گئیں اور ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مسٹری اور کرنل جیفری جناح کی کیڈلک گاڑی میں سوار تھے۔ قائد اعظم کی ایمبولنس نے بھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کے انجن کا پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولنس کے پیچھے پیچھے آنے والی کیڈلک کار، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ آخر فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی گاڑی میں ایک اور ایمبولنس لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر مستری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایمبولنس پہ شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا دشوار تھا۔ اس بے چینی پر سینکڑوں مکھیاں بھی تھیں، جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ فاطمہ جناح اور جو سسٹر تھیں ان کے ساتھ، انہوں نے ایک گتے کے ٹکڑے کے پنکھے سے ان کو ہوا بھی دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناح کی کراچی آمد راز رکھی گئی تھی، مگر کیا یہ واقعی حکومت کے اعلی عہدیدار ان کی آمد سے باخبر تھے یا نہ تھے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 4 ستمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکرٹری چودھری محمد علی کی نازک حالت دیکھ کر کراچی واپس پہنچے تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا، اور یہ ناممکن ہے کسی اجلاس میں قائد اعظم محمد علی کی جناح کی بیماری کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ میں وہ اخبار آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، قائد اعظم از ڈیڈ، لانگ لیو پاکستان۔ پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر سری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ان دنوں مقامی ریڈ کراس کے انچارج جمشید مہتا تھے، جن کی عزت کراچی کا ہر فرد اور ہر بشر کرتا تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شام کو پیغام ملا کہ ایک آدمی بہت علیل ہے، کیا آپ اس کے لیے ایمبولنس بھیج سکتے ہیں؟ یہ واقعہ 5:30 بجے کا ہے۔ خدا خدا کر کے دوسری ایمبولنس وہاں پہ پہنچتی ہے قائد اعظم کے لیے۔ ہسپتال منتقل کیا گیا ان کو، اور ان کی قسم پرسی کا عالم تھا۔ یہ جو سری پرکاش نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسٹر جناح کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے اس پارٹی میں نوابزادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا نہ آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو. اب یہ تاریخ کے دو تین پہلو ہیں. بالکل ابھی کرامت اللہ غوری صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی ایم کنفیوزڈ جب ان کی بہن کی بات پڑھتی ہوں یا جب ان کے ارد گرد رہنے والوں کا واقعات کو دیکھتی ہوں تو کہانی کچھ اور نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. کہنے والے جو بھی کہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بے شمار اقلیتوں کے لوگ تھے. کرسچنز نے بڑا سپورٹ کیا تھا. جو سکھ یہاں رہ گئے تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا. بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے قومی نغمہ سنیے.
سب سے اچھی نظم لکھے گا اسے انعام ملے گا. کیوں, کیسا رہے گا؟
یوں بھی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے.
اپنے مہاجر لیے قرآن چل
समझो इसे बेदाग, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गर वक्त पड़े मुल्क से हो जाइए कुर्बान,
मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
स्मार्ट ऑप्टिकल्स,
नजर की आना क्या धूप का चश्मा, आई साइट चेकअप के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, खूबसूरत दिखने के लिए डिजाइनर ग्लासेस, सनग्लासेस, वाइड सिलेक्शन, कॉम्पिटेटिव प्राइसेस, डायरेक्ट बिलिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी,
25% डिस्काउंट विद दिस एड।
स्मार्ट ऑप्टिकल्स 9058212444, 821-2444,
2275 Britannia Road West, Unit 7, Mississauga.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157, जी हाँ 416-570-0157।
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें 416-301-0249।
अदनान अलवी, बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम।
नान कबाब, मॉडर्न अफगानी किचन, लजीज अफगानी ग्रिल कबाब, चपली कबाब, चौपान कबाब, लैम शैंक, चिकन कोरमा प्लेट, फैमिली प्लेटर, कबाब रैप, फ्राइज, मंटू, बोलानी, फिरनी और सबके लिए बहुत से मजेदार खाने। अब आपके शहर मिसिसागा में एक और नई लोकेशन के साथ 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट F3, मिसिसागा। फॉर ऑर्डर्स एंड रिजर्वेशंस विजिट nankebab.ca।
जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:52 और 36 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। और सब व्हेन इट कम्स टू मॉर्गेजेस, डोंट फॉरगेट जैस्मीन परमार। जब मैं फोन नंबर मैं आपको देता हूँ 6479235659। गुड डेज अहेड, वेदर इज बाइंग अ हाउस, गेटिंग अ न्यू मॉर्गेज और रिन्यूअल, सी रेट नहीं बढ़ा एंड होपफुली रेट आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो दोज आर द गुड न्यूज फॉर मी, फॉर यू एंड फॉर जैस्मीन परमार। जैस्मीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जैस्मीन जी, वेलकम टू रेडियो स्वाजो आवाज, हाउ आर या?
आई एम वेरी गुड, जी हाउ आर यू?
नॉट बैड एट ऑल। सो यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस?
यस आई डू।
ओके, दैट्स द गुड स्पिरिट। तो अब क्या, व्हाट डू यू सी एंड हाउ इज दिस वर्किंग आउट?
यस, तो बेसिकली जैसे आपने बोला कि हम और हमारी, आपने राष्ट्रीय की बात की थी, डेफिनेटली वेट तो नहीं बढ़ा, बट स्टिल एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल एडवाइज ऑल आर लिसनर्स, ऑल आर बायर्स, ऑल आर क्लाइंट्स की परचेज करने के लिए आपको जब भी आपको परचेज करनी है अपने रियल्टर को कांटेक्ट करने से पहले आप अपने मॉर्गेज प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें, क्योंकि इवन दो वेट वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर क्वार्टर परसेंट रेट इंक्रीज व्हिच डिडंट हैपन स्टिल द रेट्स आर प्रीटी हाई एट द मोमेंट. सो अगर रेट्स हाई हैं तो क्वालिफिकेशन भी हार्ड है, और जितनी हमें प्रॉबेबली इस टाइम पे लास्ट ईयर हमें अप्रूवल मिल रही थी जितनी मॉर्गेज अमाउंट की, इस टाइम उस मॉर्गेज अमाउंट में की उतनी अप्रूवल नहीं मिलेगी. सो ऑफकोर्स हमारी इनकम्स उतनी है बट हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो टफ हो गई है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप $1,00,000 कमाते हैं तो आपको पहले जो है $500,000 की मॉर्गेज को इजाजी दी अगर आपके कोई डेट्स नहीं है. अब वो जो $500,000 की मॉर्गेज हैज रिड्यूस्ड एंड गॉन डाउन टू मच लोअर अमाउंट नाउ. सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम के हिसाब से, आपके क्रेडिट के हिसाब से, आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज के हिसाब से और आपकी डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको कितनी मॉर्गेज की अप्रूवल मिल सकती है. और सबसे हाँ, द मेन की इज कि हमेशा आपको अपने ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमारी बैंक से ट्रेडिशनल तरीके से मॉर्गेज नहीं होती, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. इस जिस कि हम अब जब भी हम अपनी ऑफर डालते हैं कोई भी परचेज करने के लिए, हम जब कंडीशन ऑफ फाइनेंसिंग डालते हैं अपने कंडीशन को वेव करने से पहले, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. अगर हमारी फॉर एन एग्जाम्पल अगर लास्ट मिनट हमारी मॉर्गेज जो है डिक्लाइन हो जाती है या फिर किसी भी यू नो एक्स वाई जेड रीजन की वजह से हमारी मॉर्गेज नहीं होती, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है. ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास कपल सॉल्यूशंस हो जो आपके ब्रोकर ने आपको ले आउट करे हो. यू नो द की इज यू शुड ऑलवेज हैव 3 सॉल्यूशंस ऑन योर प्लेट, ताकि आपको पता हो कि आपकी मॉर्गेज के लिए आपको कहाँ, अगर आपको बैंक नहीं जाना पड़ा आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है और आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है. उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, क्योंकि हम कई बार वी ऑलवेज रश एंड जंप इन टू अ कंक्लूजन एंड गो एंड प्रोसीड विद बाइंग, बट एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है. अगर हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारी हर ऑप्शन के साथ हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो डिफर करती है, चेंज होती है, और हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है और क्या हमारे पास इतना जो रूम है एक्स्ट्रा फंड्स के लिए प्ले करने के लिए, अगर हमें डाउन पेमेंट इंक्रीज करनी पड़े या हमें फीस के लिए यू नो फंड एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़े. दिस इज वाई हम हमेशा बोलते हैं कि आप हमारे साथ जरूर कॉन्टेक्ट करें. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सिट डाउन विद यू एंड टू ले आउट ऑल द ऑप्शंस फॉर यू, ताकि आपको अपने ऑप्शंस पता हो, आपको अपने सॉल्यूशंस पता हो और आप एक साउंड डिसीजन एज अ अवेयर एज अ इन्फॉर्म्ड क्लाइंट आप ले सकें. आपको किसी भी तरह की रेजिडेंशियल मॉर्गेज में हेल्प चाहिए, चाहे वो आप परचेज कर रहे हैं, चाहे आप रीफाइनेंस करना चाह रहे हैं. और सबसे अनदर थिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग इज राइट नाउ कि हम बहुत सारी इस टाइम सिक्योर लाइन्स ऑफ क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो है अपने फिक्स रेट मॉर्गेजेस को नहीं ब्रेक करना चाहते. विच डजंट इवन मेक सेंस टू टच योर फिक्स रेट मॉर्गेजेस विच आर एट मच मच लोअर रेट देन बींग ऑफर्ड एट द करेंट मोमेंट. बेस्ट है आप अपनी लो रेट मॉर्गेज को टच ना करें, और आपको अगर फंड की जरूरत है आप एक सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट जो प्रोडक्ट है उसको ले लें, और आपको अपने फर्स्ट मॉर्गेज के पीछे हम आपको सिक्योर्ड मॉर्गेज जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको हम कहते हैं होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट वो भी आपको अवेल करवा के भेज सकते हैं. सो अगेन, अगर आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज में या सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप मेरे साथ और मेरी टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एट 647-923-5659. हमारा ऑफिस बर्मिंघम में है ऑन द मेजर इंटरसेक्शन ऑफ Queen Street and Gorway Drive. Again, our office is now located on Gorway Drive and Queen Street in Brampton. So to book your appointment to come and see us in person, do give us a call at 647-923-5659.
There you go, Jasmine Parmar, 647-923-5659, 647-923-5659, 5659. जैस्मिन परमार का फोन नंबर है. एंड एनी क्वेश्चंस और एनी चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू योर मॉर्गेजेस प्लीज गिव हर अ कॉल. जैस्मिन परमार वंस अगेन 647-923-5659. बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मिन.
बहुत बहुत शुक्रिया माजी जी. थैंक यू सो मच.
थैंक यू जैस्मिन परमार से हमने आपकी बातचीत करवाई. कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम पे वापस आएंगे. 4166201778 हमारा फोन नंबर है.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دیاں نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900.
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجک ایجنسی کے راجہ مدثر کو 6472903773 پر کال کرنی چاہیے. آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں. راجہ مدثر 6472903773 آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی.
ریئل اسٹیٹ دی دنیا وچ تھوڑی